ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। विल हैव इट इन हिंदी। हिंदी ना? ये नारद मुनि के संबंध में ये अध्याय है। नारद द्वारा व्यास देव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। ये पहला स्कंद पांचवा अध्याय 24वां श्लोक है। लिखा है उधर बोर्ड में, ते मय्य पेथा किल चापलेर्बके दान्ते धृत क्रीडन केनु वर्तिनी चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्य दर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणी ते मय्यपेताखिल चापलेर्भके दान्ते धृत क्रीडन केनु वर्तिनी चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणि ते मय्यपेताखिल चापलेर्भके दान्ते धृत क्रीडन केनु वर्तिनी चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणि ते मय्यते किल चापलेर्भके शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणि ते मय्यपेताखिल चापलेर्भके दान्ते धृत क्रीडन केनु वर्तिनी चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणि ते मय्यपेताखिल चापलेर्भके दान्ते वर्तिनि चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणि। वैष्णवीस हे मय्यपेता किल चापलेर्भके तान्ते धृतक्रीडनकेऽनुवर्तिनि चक्रुकृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयोल्प भारे ते वे मयि मुझ में अपेत न भोग कर अखिल सभी प्रकार की चापले रुचियां हर भके बालक में, जो भी बालकों के अंदर रुचि होता है, छोटे बच्चों के अंदर रुचि होता है, वो बता रहे हैं क्या क्या है। वो उनको उन विषयों में रुचि नहीं था, नारद को, नारद लड़के को। दांते इंद्रियों को वश में करके अद्रित क्रीडन के खेल कूद की आदतों में अभ्यस्त ना होकर अनुवर्तिनी आज्ञाकारी चक्रुः प्रदान किया कृपाम अहेतु की कृपा यद्यपि यद्यपि तुल्य दर्शनाः स्वभाव से निष्पक्ष शुश्रूषमाणे श्रद्धावान के प्रति मुनयः वेदांत के अनुयायी मुनिगण अल्पभाषिणी मितभाषी कम बोलने वाले, यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की। जहाँ तक मेरी बात थी, मैं इंद्रिय जित था और बालक होने पर भी खेल कूद से अनासक्त था, साथ ही मैं चपल न था और कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था, मितभाषी था। तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री प्रभुपाद के द्वारा, श्री प्रभुपाद की। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, सारे वेद मेरी खोज कर रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य का कहना है कि वेदों के केवल तीन विषय हैं, भगवान के साथ जीवों का संबंध स्थापित करना, भक्ति कर्म करना तथा इस प्रकार से भगवत नाम जाने का परम उद्देश्य प्राप्त करना। इस तरह इन वेदांतवादियों से भगवान के शुद्ध भक्त के संकेत मिलते हैं। ऐसे वेदांतवादी या भक्ति वेदांत भक्ति के दिव्य ज्ञान का वितरण निष्पक्ष भाव से करते हैं। प्रभुपाद जी भी भक्ति वेदांत स्वामी हैं, तो ऐसे भक्ति को निष्पक्ष रूप से सारे दुनिया में सब तरह के लोगों को वितरण करते हैं। उसके लिए ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु, ना कोई शिक्षित है और ना अशिक्षित, ना कोई विशेष रूप से अनुकूल है और ना कोई प्रतिकूल। भक्ति वेदांती जन यह देखते हैं कि लोग सामान्य रूप से झूठी कामोद्दीपक वस्तुओं में अपना समय गंवाते हैं। उनका कार्य है अज्ञानी जनता के भगवान के साथ भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करना। ऐसे प्रयास से विस्मृत जीव को भी आध्यात्मिक जीवन का बोध हो जाता है और इस प्रकार भक्ति वेदांतों द्वारा प्रेरित सामान्य लोग धीरे धीरे दिव्य अनुभूति के पथ पर अग्रसर होने लगते हैं। इस प्रकार वेदांतवादियों ने उस बालक को इंद्रजित बनने के पूर्व ही दीक्षित कर लिया था और वह बचपन के खेल कूद से विरक्त हो गया था, किंतु दीक्षा के पूर्व वह बालक अत्यधिक अनुशासित हो चुका था, क्योंकि इस मार्ग पर चलने वाले के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। मानव जीवन के वास्तविक शुभ आरंभ के समय से वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में बालकों को 5 वर्ष की आयु के बाद गुरु आश्रम में ब्रह्मचारी बनने के लिए भेजा जाता है, जहां उन्हें ये सारी चीज़ें नियमित ढंग से सिखाई जाती हैं। चाहे वे सामान्य नागरिकों के पुत्र हो या राजकुमार हो, यह प्रशिक्षण न केवल राज्य में अच्छे नागरिक उत्पन्न करने के निमित्त भी अनिवार्यता, अपितु बालक को भावी जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने के लिए, उसे तैयार करने के लिए भी अनिवार्यता। वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करने वाले बालकों को इंद्रिय भोग के अनुत्तरदायी जीवन का पता ही नहीं रहता था। यहाँ तक कि जब पिता बालक को माता के गर्भ में स्थापित करता था तो वह भी आध्यात्मिक संस्कार द्वारा होता था। बालक को भवबंधन से मुक्त कराकर उसे सफलता दिलाना माता पिता का उत्तरदायित्व हुआ करता था। यही सफल परिवार नियोजन की विधि है। इसका उद्देश्य था पूर्ण सफलता के लिए संतान उत्पन्न करना। इंद्रजित हुए बिना, अनुशासित हुए बिना तथा पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हुए बिना कोई भी व्यक्ति गुरु के उपदेशों का पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और ऐसा किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर सकता। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुःवन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादिपाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तराधाकान्तनमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गिराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले दो दिन आप इधर भी आप लोगों ने मनाया होगा जन्माष्टमी और प्रभुपाद जी के आविर्भाव दिन। तो ये टॉपिक हमने क्यों चुना आज इसके संबंध में बोलने के लिए, क्योंकि जन्माष्टमी के कुछ एक हफ्ते पहले उधर वाड़ा में हम कुछ भक्त लोग चर्चा कर रहे थे कि जन्माष्टमी के लिए प्रिपरेशन कैसे किया जाए। तो उन्होंने 3-4 दिन रखा था जन्माष्टमी के पहले, प्रिपरेशन फॉर जन्माष्टमी, वही टॉपिक था। तो अलग अलग सीनियर भक्त आकर बोल सकते हैं कि कैसे प्रिपेयर तैयारी करने का जन्माष्टमी के लिए। तो कुछ भक्त बोल रहे थे कि तैयारी क्या करना है, जन्माष्टमी आ ही जाता है और बीत भी जाता है, आता है, लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, हमें ऐसे फूलों की सजावट करना है, हर साल हम करते हैं, और इस तरह बैरिकेड बनाना है, और जो हजारों मात्रा में बड़े लोग आते हैं उनके लिए प्रसाद तैयार करना है, और स्टॉल्स कुछ बनाना है, स्टॉल में स्टॉल बनाकर बांट दो भक्तों को, कुछ ना कुछ तो फिलअप कर देंगे उधर स्टॉल में, ऐसे तो ये तैयारी है बस। तो हर साल की तैयारी है, ऐसे ही करना है। तो हम आपस में चर्चा कर रहे थे कि ये भी तैयारी है, करना है, लेकिन दूसरी तरह की तैयारी क्या है, हमारे हृदय की तैयारी भगवान को स्वागत करने के लिए। जैसे कंस के कारागर में जब कृष्ण अवतरित होते हैं देवकी के पुत्र के रूप में, उसके लिए देवकी वसुदेव ने बहुत तैयारी की थी। 10,000 साल वो लोगों ने सिर्फ कुछ सूखा पत्ता का खाया और ऐसे तपस्या की भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने बेटे के रूप में। इच्छा भी की थी, प्रार्थना भी की थी, तपस्या भी की थी उन्होंने। तो भगवान सिर्फ तपस्या ही नहीं, तपस्या के साथ साथ उनके हृदय में ऐसे भगवत प्रेम था। भगवान अत्रि के भी पुत्र बनकर आए हैं, दत्तात्रेय, ऐसे आप देखेंगे, लेकिन प्रभुपद जी बताते हैं उनके तात्पर्य में है कि प्रजाम आत्मसमाम प्रयच्छतु, ऐसे उन्होंने विनती की थी अत्रि ने। हे भगवान, प्रजाम का मतलब है एक पुत्र, आत्मसमाम आपके बराबर मुझे दे दीजिए, ऐसे उन्होंने प्रार्थना की थी भगवान को। तो अत्रि मुनि, अत्रि अनसुई आपने सुना है, अत्रि बड़े तपस्वी थे, एक पांव में खड़े होकर उन्होंने तपस्या की थी बहुत सालों के लिए। और उन्होंने बोला कि कोई भी परम सत्य हो वो मेरे सामने आ जाए, तो तीनों आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो उनको पता नहीं चला कि तीनों में सुप्रीम कौन है। प्रभा जी बोलते हैं शिव जी और ब्रह्मा जी दोनों विष्णु की पूजा करते हैं, वो उनको मालूम नहीं था। वो बोले कि आप तीनों की तीन आगे, ये सत्वगुण तमोगुण रजोगुण के अधिपतियाँ आप आगे। तो उन्होंने बोला कि आप में से सबसे श्रेष्ठ कौन है मुझे ठीक तरह से मालूम नहीं, फिर भी हम आपकी तपस्या किया है क्योंकि हमें ऐसे एक बच्चे मिले जो आपके समान समान बच्चा हो, आपके समान बराबर हो आपके, ऐसे बोला उन्होंने। तो भगवान ऐसे तीन ब्रह्मा विष्णु महेश उधर आए थे, एक पाँव में खड़े थे एक कोने में, उधर से ऐसे कूद कूद कर जंप मारकर भगवान के निकट गए वो एक ही पाँव में। वो आने के बाद भी भगवान को दिखाया कि हमने दूसरा पाँव नीचे नहीं रखा है, इतना तपस्या किया हमने ऐसे। तो वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि ये जो बेटा है मेरा, ये परम सत्य है, ये परम भगवान के बराबर है। इसका मतलब क्या है, हमारी तपस्या में इतना श्रेष्ठता है कि भगवान को खुद एक पुत्र देना पड़ा उनके बराबर, इस तरह की भावना से उन्होंने तपस्या की थी। इसलिए यात्री को उतना ऊंचे प्लेटफॉर्म में नहीं रखा जाता है। लेकिन देवकी और वसुदेव जो है उन्होंने भी तपस्या की थी, लेकिन उस तपस्या में प्रेम था भगवान के लिए, भगवत प्रेम था, कृष्ण प्रेम था। तो उन्होंने भी ऐसे ही मांगा था भगवान को, हे भगवान आप इतने खूबसूरत हो, इतने ऐश्वर्यशाली हो, इतने प्रेमास्पद हो, आनंद के घन हो, इसलिए आप जैसे हमको पुत्र चाहिए, उन्होंने भी बोला था ऐसे। लेकिन भगवान ने उनको बोला देखो मेरे जैसे कोई नहीं है, मैं ही आ जाता हूँ, और खुद ही आ गए भगवान ऐसे उनके लिए। आप बोलेंगे प्रभु जी दोनों ने एक ही चीज़ बोला है, भगवान के बराबर बच्चा मांगा है, एक को भगवान ने ऐसे दत्तात्रेय को दिया, और ऐसे एक एक से एक एक आते हैं तीनों गुणावतारों से ऐसे वो देते हैं। लेकिन इसमें क्यों इतना फर्क है, क्योंकि देवकी वसुदेव का प्रेम दिव्य प्रेम है, शुद्ध प्रेम है, और उनके हृदय में इच्छा था कि भगवान की हम सेवा करें अपने बेटे के रूप में प्राप्त करके, ऐसे इच्छा किया उन्होंने तो भगवान उनको प्राप्त हुए। तो इसका मतलब क्या है, वो अंधेरा जो था कंस के कारागर में, इस तरह हमारे हृदय में भी अंधेरा है। और अंधेरा क्या है, अज्ञानता रूपी अंधेरा। तो उस अज्ञानता को दूर करने वाले हैं भगवान। जब बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमह नाशयामी आत्मभावस्तो, मेरे उपस्थिति से अज्ञान रूपी अज्ञान अंधकार तुम्हारे हृदय से मिट जाएगा, भगवान पहले से बोलते हैं भगवद्गीता में। इस तरह भगवान जब अवतरित हुए पूरा अंधकार मिट गया, वो जेल में जेलखाने में पूरा रोशनी छा गया इसे उधर, तो भगवान प्राप्त हो गए। लेकिन भगवान को प्राप्त करने का मतलब यह नहीं है कि हमने तपस्या की है भगवान मिल गए बस अभी सब कुछ हो गया, नहीं, भगवान को प्राप्त करने के बाद भी उनको अनेक डेंजर था, क्योंकि उन्होंने भगवान की सुरक्षा के बारे में सोचा, ये छोटा नन्ना मुन्ना बालक है, क्रूर कंस आ जाएगा इनको मारने के लिए, तुरंत इनको बचाना चाहिए। तो उन्होंने भगवान से ही प्रार्थना की कि हे भगवान आप ही बताओ हम आपको कैसे बचाएं। तो भगवान ने बोला बचाने की क्या ज़रूरत है, हमको कौन मार सकता है हमको, है ऐसे नहीं बोले भगवान, क्योंकि देवकी वसुदेव के हृदय में डर उत्पन्न हुआ प्रेम के कारण, इसलिए भगवान ने बोला ठीक है मुझे आप गोकुल लेके जाओ। तो 11वें साल में जब भगवान वापस लौटते हैं उनके पास मथुरा में, तभी भगवान बोलते हैं हे माता पिता देखिए जन्म देते ही उसी दिन मैं आपको छोड़कर गोकुल चला गया, आप लोग देख नहीं पाए मुझे, दूध अपने स्तनपान नहीं कर पाई, एक ही बार किया आपने, लेकिन अगले दिन आप दूध हमको दे नहीं पाई क्योंकि तुरंत हमको निकलना पड़ा उसी रातों रात हम निकल गए। इसके कारण ये 10 साल से आप मेरे विरह में रहे हैं माता पिता। इसका मतलब क्या है, भक्ति मार्ग में भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की सुरक्षा के लिए एक व्यक्ति भगवान से विरह भावना को अनुभव करते हुए अपना जीवन बिता सकता है। वो तकलीफ उठा सकता है किसकी संतुष्टि के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए। अभी देवकी वसुदेव उनको मालूम था कि अगर कृष्ण को हम उधर भेज देंगे गोकुल में, कंस हमको पकड़ेगा और भी मारने की संभावना है। वो प्राण को त्यागने के लिए भी वो तैयार थे कृष्ण की सुरक्षा के लिए। हाँ, और कृष्ण कृष्ण के साथ रहने से उनको आनंद मिल सकता है, लेकिन उनके खुद की सुख से भी ज़्यादा उनको ज़रूरत था कृष्ण की सुरक्षा। कृष्ण दूर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन कृष्ण निकट रहेंगे तो हमें सुखी बनाएंगे। दोनों में आपको क्या अच्छा लगता है? अगर कृष्ण साथ में रहेगा तो सुखी होंगे एक दिन के लिए, अगले दिन तो उठा कंस आकर, है ना। तो कंस को निकट रखने से सुखी बनेंगे, थोड़ा रिस्क लेकर रख सकते हैं, लेकिन कृष्ण को दे देने से, गोकुल भिजवाने से उनकी सुरक्षा प्रदान होगा। इसलिए कृष्ण, इसलिए तत्सुखी सुखित्वम ऐसा बोला गया है, रूप गोस्वामी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, भक्त का सुख का मतलब है भगवान की सुख में भक्त अपने सुख अनुभव करते हैं। अगर भगवान सुखी रहेंगे उधर गोकुल में तो हम भी सुखी हैं उससे। तो अगर इधर रहने से भगवान के लिए कथरा है तो हम ऐसे कथरा नहीं चाहते हैं उनके लिए। तो इस तरह देवकी वसुदेव का आदत थी, आज मन में ऐसे उनका विचारता ऐसे। तो जिस तरह देवकी वसुदेव ने हजारों साल तपस्या करके कृष्ण को प्राप्त किया, इस तरह भगवान कृष्ण हमारे जीवन में भी बोलते हैं कि सततम कीर्तयन्तो तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। हमको भी यत्न करना पड़ेगा, यत्न करना पड़ेगा भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो अक्सर प्रभुपाद जी बोलते हैं उनकी किताबों में, मन मना भव मत भक्तो, कृष्ण के बारे में चिंतन करो। हाँ, कैसे चिंतन कर सकते हैं आप पूछेंगे, प्रभुपाद जी बोलते हैं नाम जप करो। ठीक है, हम नाम जप करते हैं, क्या उसे स्मरण होता है तुरंत? होता नहीं है। हम जिस विषय को अपने मन में हम धारण करते हैं और सदा उसकी चिंतन करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, तो उसी चीज़ को हम प्राप्त करते हैं, ऐसे शास्त्र बोलते हैं। यत्र यत्र मनोदेही धारये सकलम धिया स्नेहाद् द्वेषाद् भयाद् वापि याति तत्तत् स्वरूपताम। ऐसे भागवत में एक श्लोक है, यत्र यत्र मनोदेही, जिधर भी हमारे मन भागता है, धारये, किसी भी चीज़ को पकड़ता है मन और ऐसे कुछ समय के लिए धारण करके रखता है, ऐसे रख रख कर उसके ऊपर ध्यान करते करते एक व्यक्ति उसी चीज़ को प्राप्त करता है। जैसे कुछ लोग, उनको कुछ बड़ा इंडिपेंडेंट बंगलो बांधने की इच्छा है लेकिन पैसा नहीं है हाथ में, तो एक घर का एक तस्वीर बनाकर रखते हैं, एक तस्वीर बनाकर अपने नोटिस बोर्ड में लगा कर रखते हैं, देखते रहते हैं कब समय आएगा हम ऐसे बना पाएंगे ऐसे। तो देख देख कर धीरे धीरे पैसा इधर उधर जाकर गल्फ जाते हैं, इकट्ठा करके लेके आते हैं और घर बन जाता है धीरे धीरे। जिसकी सपना करते हैं वो होता है, लेकिन बाय द टाइम वो करते हैं उनका सी उम्र हो जाता है, अभी 2 साल निकलना पड़ेगा उनको ऐसे। फिर भी बोलने का मतलब है कि लोग जिस विषय की सपना करते हैं उसको ही प्राप्त करते हैं, अगर उनके प्रारब्ध कर्म में हो तो वो प्राप्त करते हैं उसको। किसी को कार खरीदना है, किसी को मकान खरीदना है, वो ड्रीम कार, ड्रीम बिल्डिंग, ड्रीम गर्ल, ड्रीम जॉब, ऐसे सब ड्रीम है। तो ड्रीम ड्रीम करके धीरे धीरे वो ड्रीम को आकार देने के लिए प्रयत्न करते हैं। इस तरह जीव को भी भगवान को, जितना जीव ड्रीम करता है उतना भगवान प्राप्त होते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि इस्कॉन में ब्रह्मचारी लोग उन दिनों में रात को दूध पीते समय कृष्णा बुक से सुनते थे कथा रात को। कारण क्या है, वो दूध पीते पीते कृष्ण के बारे में सुनते रहो आनंद के साथ और सो जाओ, उसको बोलते हैं कृष्ण स्मरण बोलते हैं ना। और सोते समय क्या कृष्ण का स्वप्न आएगा, हमने सुना कि कृष्ण मुरली बजाते हुए जंगल में प्रविष्ट होते हैं, जंगल में सब भेड़ वो मुरली बाज को सुनकर हिलते हैं, सब फल नीचे गिरते हैं उससे। लेकिन पेड़ों के अंदर भी चेतना है, पेड़ के नीचे सोए हैं कुछ गोप बालक, उनके ऊपर नहीं गिराते हैं फल, उनके आज बाजू में इतना गिराते हैं कि गोप बालक उठकर देखते हैं कि सारों बाजू में फल ही फल है, लेकिन उनके ऊपर एक भी नहीं गिरा है। तो इस तरह भागवत में हम पढ़ते हैं कैसे मोर नाचते हैं और हिरण और हिरनी पति पत्नी वो आ जाते हैं भगवान के निकट आकर, वो सुनते हैं, कुछ डर नहीं है भगवान से है। तो इस तरह के विविध वर्णन है। अगर आप रात को पढ़ेंगे तो सोगे तो कभी नींद में स्वप्न आ जाता है, कृष्ण मुरली बजा रहे हैं और सब हिरण आ गए, मोर आ गए, पंछियाँ बैठे हैं पेड़ पेड़ के डालियों में है, इस तरह। तो ये प्रभुपाद जी की योजना थी कि कृष्णा कृष्णा बुक पढ़कर कृष्ण का स्मरण हो। लेकिन हम अनुभव करते हैं कृष्ण की लीलाओं को पढ़ने के बाद भी हमारे मन उन लीलाओं को पकड़ता नहीं है, पकड़ कर रखता नहीं, उसमें रमण नहीं करता है। सी आवर एस्पिरेशंस स्प्राउट फ्रॉम एडमिरेशंस। हमारे जो लालसाएं हैं हमारे जीवन में वो उन विषयों से उत्पन्न होते हैं जो जिसकी संबंध में हम बहुत प्रशंसा करते हैं। एडमिरेशन मीन्स व्हाट इज एडमिरेशन? सराहना। जिसकी सराहना हम करते हैं वही हमारे लालसा बनता है भविष्य में। उदाहरण के लिए अगर कोई बोलता है, हे वो जो पीछे बैठा है मालूम है कौन? ये सीधा बिल गेट्स का आदमी है, ये टाटा का भाई है, ऐसे। तो उसका मतलब क्या है? जो लोग बहुत धनी हैं हम उनको बड़ा आदर देते हैं, नहीं तो कोई बोलता है, मालूम है ये IITian है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है IIT के ऊपर हमें बहुत आदर है, इसलिए जो IIT से आया है उसके ऊपर भी हमें आदर है, समझे ना आपने? अगर कोई बोलेगा ये देखो पीछे जो बैठा है ये गरीब आदमी है, सुदामा जैसे महान भक्त है, सुदामापुर जैसे था, सुदामा ब्राह्मण ऐसे, तो ऐसे बोलने वाले बहुत कम है। ये जो बैठा ना फटा कपड़े के साथ है, इतना महान भक्त है। तो हम दूसरे लोगों को देख कर हम जिस विषय की एग्जैक्ट वर्ड आई एम नॉट गेटिंग, वॉट एवर थिंग वी आर अमेज्ड आर वी एडमायर इन अदर्स, हाउ डू यू से दैट? अमेज्ड, आप किसी के कुछ योग्यता को देखकर प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन वो क्या है वो देखना चाहिए, किससे हम प्रभावित होते हैं। इस दुनिया में हम लोग बाहरी योग्यताओं को देखकर प्रभावित होते हैं। ये कोई भक्त था उन दिनों में, एकदम खूबसूरत दिखता था, एकदम लंबा था, लंबे बुझते, बहुत सुंदर तिलक पहना था, ऐसे वो चलता था, लगा कि चैतन्य महाप्रभु के छोटे भाई हैं, ऐसे ऐसे उसके आंखें कमल के पंखड़े जैसे थे। इधर कोई तो हमारे मंदिर में आया था उन दिनों में, कहीं किसी और मंदिर से, तो हमारे एक भक्त ने सोचा कि इतना सुंदर दिख रहा है इसको हम शाम के कार्यक्रम में लेके जाएंगे, तो उनको उठा कर लेके गए वो शाम के कार्यक्रम में, सीधा बिठा दिया व्यासासन में, और वो तो बोल रहा है, अनेक सिनेमा का गाना सुना रहा है वो है। उसने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, प्रभुपाद की मूवमेंट में है लेकिन पढ़ा लिखा नहीं कुछ है। तो बाद में वो बोल रहा है, वापस लौटने के बाद बोला कि हमें सारी प्रभु जी हमने प्रभुपाद की किताबें उतना ज़्यादा पढ़ा नहीं है, थोड़ा इधर उधर गाना जो हम गाते थे उसको भगवान से जोड़कर हमने बोल दिया, ऐसे कुछ बोले। तो वो वक्त आया मेरे पास, बोला कि प्रभु जी इस तरह कर दिया आदमी ने, उनको भी आसन में डालने के बाद हमको लगा कि क्यों इनको लेके गए हमने, ऐसे लगा हमको। मैंने बोला, मैंने उनको पूछा तुमने क्यों लेके गया उनको, देखने में बहुत सुंदर था प्रभु जी। अरे भक्त की सुंदरता उसके शरीर की चमड़ा से नहीं है खूबसूरती, उसके हृदय की सुंदरता देखना चाहिए, उसकी भगवत भक्ति भगवान में निष्ठा वो देखना चाहिए, है ना? इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जानना हो तो उसके उसके उसको कुछ प्रश्न पूछो, जब मुख से कुछ शब्द निकलेगा पता चल जाएगा कि ये क्या बेवकूफ़ है, ये भक्त है, पता चल जाएगा। ये फूल इज रिवील्ड व्हेन ही ओपन्स हिज माउथ, प्रभुपाद से इस लाइक ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद जी। तो इस तरह हालांकि हम भगवान के संबंध में पढ़ते हैं, शास्त्र सुनते हैं, कभी कभी हम सुनते हैं कि कृष्ण मुरली बजा रहे हैं, ऐसे पत्थर पिघल गए, और जो जर ये होता है यमुना बह रही है लेकिन वो रुक जाती है, लेकिन पत्थर जो पत्थर में किसी भी तरह का मुलायम चीज़ नहीं है, लेकिन वो मुलायम हो जाते हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं पत्थर, ऐसे ये सब सुनते हैं। लेकिन हमारे पत्थर जैसे हृदय पिघलता नहीं कृष्ण के बारे में सुनने के बाद भी। वो हमारे हृदय बोलता रहे मालूम है, बहुत बार सुन लिया हमने, यह क्या बड़ी बात है प्रभु जी, वही बोलते हैं बार बार। ठीक है, वजवासी लोग आकर्षित हो गए, लेकिन हम आकर्षित होते नहीं, क्या किया जाए, इस तरह मन पूछता है। इसलिए हमें यह ढूंढना चाहिए कि कारण क्या है, हम इतना भगवत चर्चा करते हैं लेकिन घुसता नहीं हमारे हृदय में, हृदय पिघलता नहीं, हम जागृत होते नहीं, इसका कारण क्या है ये देखना चाहिए। इसलिए ये श्लोक जो पढ़ा हमने अभी, इसमें चार योग्यता बताया गया है। नारद लड़का जो था वो भक्ति वेदांतों को मिलने के पहले उनके अंदर था ये क्वालिफिकेशन, क्या था, दांते अक्रीडन के अल्पभाषिणी अनुवर्तनी, चार चीज बोलते हैं। तो दांते का मतलब है सेल्फ कंट्रोल, इसका मतलब क्या है, हम सब लोग इस दुनिया में हमारे बाहरी इंद्रियों को दमन करने के लिए प्रयत्न करते ही हैं, क्योंकि लोक लज्जा है, इसलिए हम थोड़ा शर्म आता है, इसलिए हम कंट्रोल करते हैं। जैसे सबको दो दो गुलाब जामुन दिया जाता है और उसके बाद भी कोई पूछता है और दो मिलेगा क्या, वो बोलते नहीं मिलेगा, बोलते ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे ही पूछा हमने, ऐसे बोलते हैं। और वो वापस लौट आता है गुलाब जामुन वाला और उसको बोलता है देखो सब लोगों को होने के बाद बचा तो दो दे देना, और वो पूछता है कितना चाहिए आपको, जितना पच जाता है दे देना हमको, करेक्ट है ना। तो इस तरह से कभी भी शर्म आता है फिर भी बोल भी देता है, क्योंकि शर्म से ज्यादा रुचि है जीवा में, वो सोचता है कि शर्म भी आए निंदा भी हो फिर भी हमें वो टेस्ट करना है, ऐसे हम देख सकते हैं। तो जब हम सेल्फ कंट्रोल की बात करते हैं, ये सिर्फ इंद्रियों की निग्रह ही नहीं है, अगर कोई व्यक्ति इंद्रियों की निग्रह करेगा लेकिन मन को कंट्रोल नहीं करेगा, वो मन वापस इंद्रियों को उसी बुरे हालत में डालेगा, तो इंद्रिया वो पराजित हो जाएंगे इंद्रिया ऐसे। इसलिए इंद्रियों को कंट्रोल करना, दो विषय बताया गया है, दमा और शमा। दमा का मतलब है बाहरी रूप से इंद्रियों को कंट्रोल करना, लेकिन शम भी करना चाहिए, कंट्रोलिंग द माइंड। ये श्लोक है ना, कर्म इंद्रियाणि संयम ये आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। ये श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति बाहरी रूप से इंद्रियों को दमन करता है लेकिन अपने चित्त में मन में वो गलत विषयों की ओर उसका ध्यान लगाता है, जैसे काम क्रोध लोभ दे, चिन तीन चीज जो है भगवान कृष्ण उसको बोलते हैं कि क्या है, ये तीन द्वार हैं नरक के अंदर प्रवेश करने के लिए, काम क्रोध लोभ। तो इसके ऊपर उठना चाहिए व्यक्ति को, इन काम क्रोध लोभों को मन में रख कर बाहरी दृष्टि से अगर हम इंद्रियों को दमन भी करेंगे ये बहुत समय टिकने वाली बात नहीं है, इसलिए मन को भी कंट्रोल करना चाहिए बोलते हैं। लेकिन ये मन में चलने वाली विचारधारा को कैसे कंट्रोल किया जाए, हम सबका अनुभव है कि मन सुनता नहीं है, बड़ा बदमाश है, मन में बहुत मल भी है, हम निकाल भी नहीं पाते हैं, और हम जितना भी चिल्लाते हैं हरिनाम भी करते हैं वो सुनता नहीं है, मन बार बार पकड़ कर रखता है, जिसको पकड़ना नहीं चाहिए उसको पकड़ता है, जिसको पकड़ना चाहिए पकड़ता नहीं है, ये मन का आदत है, हमने देखा है। तो इस बुरे आदत से हम कैसे ऊपर उठे, तो इसके लिए शास्त्र बताते हैं कि एक इंसान को क्या करना चाहिए, पढ़ने से भी ज़्यादा अच्छा श्रवण करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं भगवद गीता भागवत पढ़ते हैं और भूल भी जाते हैं, लेकिन ऐसे पढ़ने से कभी ज़्यादा लाभ नहीं होता है, इसको बुकिश नॉलेज बोलते हैं। बुकिश नॉलेज का मतलब क्या है, कुछ पढ़ा कुछ दूसरों को कुछ बोल दिया, पढ़ा कुछ बोल दिया, डाउनलोड कर दिया इंफॉर्मेशन, उससे हमारा खुद का ज़्यादा प्रगति होता नहीं है, थोड़ा बहुत होता है लेकिन ज़्यादा होता नहीं है। तो हमें सुनना चाहिए जो साक्षात्कारी पुरुषों से सुनना चाहिए, जो सेजस एंड सेंटली पर्सन्स हैं उनसे हमें सुनना चाहिए, और वो सुनकर जिस विषय के बारे में हमने सुना उसी विषय के संबंध में पढ़ना चाहिए। अगर हमने कुछ कथा सुना है, अगर कालिया दमन लीला सुना आपने, तो तो घर वापस लौटकर अगर हम किताब को लेकर पढ़ेंगे हम, और भी हमें अच्छा समझ में आएगा वो है? जो सुनना और उसके बाद पढ़ना, पढ़ने के बाद क्या करना चाहिए, उसका चर्वण करना चाहिए। चर्वण कैसे करना है, कुछ समय के पहले मैंने आपको बोला कि कृष्ण की लीला सुनना अच्छा है, लेकिन सुनने के बाद भी हम हमारे हृदय में वो लीला बैठता नहीं है और कुछ नहीं ले पाते हैं। कारण क्या है, हमारे बद्धावस्था में कृष्ण बहुत दूर है हमारे लिए। इसलिए शास्त्र बताते हैं कि कृष्ण के भक्त की चर्चा भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कृष्ण के संबंध में चर्चा इम्पॉर्टेंट है। जैसे पिछले दो दिन, पहला दिन हम कृष्ण की लीला चर्चा की है ना, और अगले दिन प्रभुपद की लीला चर्चा की है ना, एक भगवान का और दूसरे दिन भगवान के महान एक भक्त का। क्योंकि भगवान के भक्तों की चर्चा हो नहीं सकता है भगवान के बिना। अगर कोई भगवान के भक्त का चर्चा करता है भगवान के बिना, उसको सेंटिमेंटल बोला जाता है। क्योंकि कभी कभी कोई कुछ कुछ भक्त लोग बोलते थे कि प्रभुपाद जी, एक व्यक्ति था, उसने देखा कि प्रभुपाद जी ऐसे अंगूर को मुख में डालते थे और करके वो थूकते थे ऐसे, वो सीधा जाकर एक डस्टबिन में गिरता था वो, और डस्टबिन है वो माइक सिस्टम के पास है। प्रभुपाद जी ऐसे एक आते हैं करते हैं उधर जाकर गिरता है ऐसे। तो एक व्यक्ति आया था प्रभुपाद को मिलने के लिए, देखा कि स्वामी जी इधर से लेकर का रहे हैं उधर थूक रहे हैं, सीधा पहुंच जाता है बास्केटबॉल जैसे है। बड़ा आश्चर्य हुआ, वो बार बार देख रहा था ऐसे ऐसे देख रहा था, एक भी मिस नहीं हुआ है। तो प्रभावित हुआ, तो वो बोलता है बाद में मैंने देखा स्वामी जी, इससे मैं प्रभावित हो गया, अच्छा है शुरुआत के लिए। लेकिन उसके आगे नहीं जाने का प्रभुपाद जी कौन है, वो आप पूछो उसको प्रभुपाद जी कौन है, वो बोलेगा बास्केटबॉल प्लेयर है, सीधा डालते हैं वो है ना, उससे ज़्यादा मालूम नहीं उसको है। इसलिए महान पुरुषों की असली उनका आइडेंटिटी, व्हाट इज आइडेंटिटी, पहचान, उनका पहचान क्या है, उनका क्या संबंध है भगवान के साथ। इसलिए हम गाते हैं रोज संसार दावा ना लगाते हैं ना, उसमें गाते हैं भगवान के साथ उनका संबंध क्या है। वो बड़े दक्ष हैं गुरु, किस में दक्ष हैं, अपने शिष्यों को भगवत कैंकरी में, भगवत सेवा में लगाने में, युगल राधा कृष्ण युगल की सेवा में लगाने में वो बहुत बड़े निपुण हैं, और भगवान के बहुत निकट हैं, और भगवान उनको बहुत कृष्ण प्रेष्ठाय बोलते हैं, भगवान के बहुत भगवान को प्रेम करते हैं। तो इसलिए भगवान के महान भक्तों से सुनना चाहिए और उनके जीवन चरित्र को पढ़कर उसमें रमण करना चाहिए। यह और भी आसान है, देखिए भगवान में रमण करना थोड़ा कठिन है, लेकिन भगवान के महान भक्तों के जीवन चरित्र में रमण करना और थोड़ा आसान है उससे, भगवान से भी। क्योंकि वो लोग इस दुनिया में बड़े हुए हैं, पले हैं और कार्य किया है। प्रभा जी जलदूत में गए, हार्ट अटैक हुआ, अमेरिका गए, उधर NVCC में उन्होंने ड्रामा भी की थी इस बार कल्चरल प्रोग्राम में, बहुत अच्छा हुआ था। तो इसके बारे में जब लीलामृत पढ़ते हैं, नहीं तो किसी भी महान भक्त की जीवन चरित्र को पढ़ते हैं, कुछ कुछ लोग ऐसे लोग उनके जीवन चरित्र पढ़ते हैं क्योंकि उसमें एडवेंचर है उसमें है। लेकिन शुरुआत में एडवेंचर के लिए पढ़ते हैं। प्रभुपाद की जीवन चरित्र भी लोग बहुत प्रशंसा करते थे कि ये स्वामी जी इतने बूढ़े अवस्था में अमेरिका जाकर कैसे किया। एक आदमी बोला कि वो आया था हमारे स्टॉल में, उसको मैंने पूछा कितना उम्र है आपका, बोला 70 बोला, और स्टॉल से खरीद रहा था प्रभुपाद लीलामृत पूरा सेट। मैंने बोला आपके पास कुछ छोटा किताब है क्या, मैंने पूछा, कुछ नहीं है बोला, ये पहला किताब मैं पढ़ने वाला हूँ। मैंने पूछा क्यों, प्रभुपाद जी भी 70 में गए, मेरा भी 70 अभी अभी मैं सोचना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या किया 70 में, ये पढ़ना चाहते हैं ऐसे बोला। तो इस तरह वो पढ़कर बाद में उसको इतना रुचि जागृत हो गया, अभी बोला कि मुझे कृष्ण भावनामृत क्या है मुझे समझना है, आकर पूरा प्रभुपाद की किताब सेट लेकर गया। उसके बाद पहले स्वामी जी के बारे में जाना, प्रभावित होकर उनके किताबों को खरीदा उसके बाद पढ़ने के लिए ऐसे। इस तरह भगवान के महान भक्तों की जीवन चरित्र से अगर कोई प्रभावित होगा, शुरुआत में उसके प्रेम जो है थोड़ा भौतिक रहेगा शुरुआत में, लेकिन धीरे 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 वो देखेगा कि ये कृष्ण को इतना प्रेम करते हैं, इसका मतलब है कि तो कृष्ण में तो कुछ तो है, नहीं तो क्यों इतना प्रेम करते हैं वो कृष्ण को, और भी कृष्ण के बारे में जानने की इच्छा होगी। जब वो जानेगा कि कृष्ण और इस शुद्ध भक्त के बीच में क्या संबंध है, वो विषय के ऊपर ध्यान देगा, तभी इसको कृष्ण की ओर रुचि जागृत हो जाएगा इसके हृदय में ऐसे। इसलिए हम ऐसे भगवान के महान भक्तों की चरित्र पढ़ना चाहिए, उनकी कथा सुनना चाहिए। तो हमारे पास वैष्णव साइंस का एक किताब है, हम पढ़ते हैं कि नरहरि सरकार, तो रघुनंदन ठाकुर, ऐसे महान वैष्णव जैसे गोस्वामी गण कैसे रहे हैं, आलवार वगैरह कैसे रहे हैं, एंड ऐसे हम पढ़ते हैं उनके बारे में, माधवेंद्रपुरी इस तरह, भक्तिनोद ठाकुर, भक्तान सिंह ठाकुर, शिल प्रभुपाद और उनके शिष्य भी, इस तरह हम पढ़ते हैं उसके बारे में, हम प्रभावित होते हैं। कभी कभी हमारा मन इतना बड़ा बदमाश है कि बोलेगा कि वो सब पहुँचे हुए भक्त हैं, हम पहुँचे हुए नहीं हैं, हम हमारा चलाता रहेंगे, ऐसे बोलेगा मन। इसलिए भक्त को क्या करना चाहिए, ऐसे भक्तों के जीवन चरित्र से प्रेरणा तो लेना ही है, इसको सद्धर्म पृच्छा बोलते हैं इसको। लेकिन साथ साथ हमें देखना चाहिए कि शास्त्र में जो बताया है मेरे जीवन में कैसे लागू है, यह देखना चाहिए, मैं कैसे इसको अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसके संबंध में हम लोग जिस तरह हाथ पैर से हम काम करते हैं, इस तरह मन से भी हमें चरवण करना चाहिए, कंटम्प्लेशन करना चाहिए। वो कैसा करना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि किन विषयों के ऊपर हमें सोचना चाहिए, किन विषयों के ऊपर हमें ना सोचना चाहिए, दोनों मालूम होना चाहिए। और उसके बाद बहुत तकलीफ करके हमें मन को सही दिशा में चलाना चाहिए। उदाहरण के लिए हमें मन में सोचना चाहिए कि भगवान की दिव्य गुण, महान आचार्यों की दिव्य गुण, वैष्णवों का दिव्य गुण, और जो जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं उनके अंदर क्या क्या दिव्य गुण, यह देखना चाहिए। इसलिए हम फेस्टिवल मनाते थे ब्रह्मचारियों के लिए, महीने में एक बार करते थे। वो क्यों करते हैं, क्योंकि एक भक्त के बारे में आपको जानकारी नहीं है, लेकिन उनकी गुणगान सुनो तभी पता चलता है कि अरे इसके बारे में मुझे मालूम नहीं था, मैंने सोचा कि ये तो साधारण भक्त है, इतना किया है भगवान के लिए। इस तरह हमारा मन उसमें रमण करता है, तभी हम प्रभावित होते हैं, और उनको देखते ही हमें तुरंत वो याद आता है, इस भक्त के बारे में हमने सुना था कि इतना ये भक्त ने परिश्रम की है भगवान की सेवा के लिए, है ना। ऐसे तो यह एक चीज़ है, योजना सोचने के लिए लायक पदार्थ है, चीज़ है। और दूसरा चीज़ है, भगवान की कृपा किसी भक्त के जीवन में कैसे आया है, इसके बारे में सोचना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि एक आपकी मित्रता कोई तो साधारण जो बहुत भौतिक जीवन में रमण करता था, लेकिन कैसे वो प्रभावित हो गया, जैसे ध्रुव महाराज कैसे थे, कैसे बने, कैसे वो लोभी थे पहले, भगवान के भक्त बनकर शुद्ध भक्त बन गए, ये तो शास्त्र में हम पढ़ते हैं। इस तरह हमारे दैनिक जीवन में भी आप में से कितने लोगों ने देखा है कि कोई व्यक्ति बहुत पतित था लेकिन महान भक्त बन गया, आपने देखा है, देखा ना आपने, ऐसे हम देख सकते हैं, हम खुद ही एक उदाहरण है, और भी देख सकते हैं दूसरा में भी, है ना। तो दूसरा उदाहरण मिला नहीं तो हम खुद का भी बोल सकते हैं, हम किस दिशा में जा रहे थे, हम कैसे हमको यू टर्न लेकर महान भक्तों ने लेके आया भगवान की ओर, ये देखना। इस तरह हम इसके बारे में सोचना, मन में सोचना, और खुद सोचने से हमें उनकी ओर आदर बढ़ता है, कितना उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है एक जीवन में, किधर थे, पाताल लोक में थे, अभी सत्यलोक तक चले गए हैं, इतना ऊपर आए हैं, इसलिए हमें उनकी ओर आदर हमें बढ़ता है ऐसे भक्तों को देखकर। और तीसरा चीज़ है, हमारे जीवन में हमें देखना चाहिए कि किस किस भक्त से मैंने क्या क्या प्राप्त किया है। कोई सम भक्त है उनसे भी हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है, हमारे वरिष्ठ भक्त है उनसे भी प्राप्त किया है, गुरुजन है उनसे भी प्राप्त किया है। इस तरह देखा जाए तो अनेक वैष्णवों से हम सुनते हैं, देखिए हर एक वैष्णव का मुख जो है उससे निकलने वाली शब्द अंततोगत्वा भगवान का ही शब्द है, क्योंकि कृष्णम वंदे जगद्गुरु, लेकिन वही कृष्ण अलग अलग भक्तों के मुख से बोल रहे हैं। जब हम सुनते हैं हम कुछ भक्तों से प्रभावित होते हैं, ज़्यादा ही प्रभावित होते हैं, और दूसरे भक्तों को सुनते हैं हमें उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं हम, लेकिन फिर भी हम उन भक्तों का अनादर नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि ठीक है ये भी वैष्णव है, ये पढ़ते हैं प्रैक्टिस करते हैं, जो जिस तरह भगवान ने इनको एम्पावर किया है ऐसे वो बोल रहे हैं। अगर मैं प्रभावित होता हूँ कुछ भक्तों से तो उनके संग लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम इस तरह भक्तों के मुख से जब हम सुनते हैं उसको हमेशा हमें प्रैक्टिकल देखना चाहिए अपने जीवन में। तो इस तरह हमने क्या क्या सुविधा, सुख सुविधा, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण और योजना, हमारे भक्ति में आगे बढ़ने की योजना और आश्रय, ये सब प्राप्त किया है हमने भक्तों से इसके बारे में चरवण करना मन में। तो ये सब चीज मैं बोल रहा हूँ, हम अकेले अकेले हम रहकर हम ये सब कर सकते हैं। इसको अंग्रेजी में कंटेम्पलेशन बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में मनन, मनन करना। अभी हम ये सर्कल बनाते हैं, अकाउंटेबिलिटी सर्कल, अकाउंटेबल कोऑर्डिनेटर एक सर्कल में आते हैं, नहीं तो एक काउंसलर काउंसलिंग के ग्रुप में आते हैं। जब हम बोलते हैं एक दूसरे के साथ संघ करना, इसका मतलब क्या है? संघ का मतलब क्या है? दोनों लोग बैठकर पिज्ज़ा खाना साथ में, वो संघ हो गया वो। एक्चुअली साथ में आकर क्या करना चाहिए, ऐसे विषय चर्चा करना चाहिए कि एक वक्त बोलता है कि मेरे जीवन में मैंने कृपा कैसे प्राप्त किया, तो दूसरा वक्त बोलता है कि मेरे जीवन में मुझे कैसे असीम कृपा प्राप्त हुआ मुझे, ये बोल सकते हैं। नहीं तो दोनों साथ में आकर बोल सकते हैं कि प्रभुपाद जी की महानता देखो कैसे, ये कुछ बोलता है प्रभुपाद के बारे में, वो और कुछ बोलते हैं, तो दोनों ऐसे चर्चा करते हैं। तो जो भी विषय हम अकेले करते हैं उसको उनके साथ कर सकते हैं चर्चा में, इस तरह। अब शास्त्र में दिए हुए विषयों को देखना चाहिए कि हमारे जीवन में कैसे वो लागू होता है, हमारे जीवन में कैसे लागू होता है, ये देखना है। तो इस तरह हमारे जीवन में भगवान का हाथ कैसा है। देखिए हमारे जीवन में अगर कुछ समस्या आता है, हमारे मन पूरा डूब जाता है उसमें। अगर किसी ने मुझे निंदा किया उदाहरण के लिए, तो हमारा मन पूरा कंज्यूम हो जाता है। से कंज्यूम व्याप्त करता है, और पूरा मन व्याप्त हो जाता है उसमें। इसने बोला चिल्लाता रहता है मन ऐसे। लेकिन जो व्यक्ति रेगुलरली मनन करता है वो क्या करेगा, उस विषय में चरवण करने के बदले इस विषय में भगवान का हाथ क्या है वो देखेगा। वो वी शुड सी व्हाट इज लॉर्ड्स हैंड इन दिस इंसिडेंट, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू नो दैन टेकिंग लॉट ऑफ पेन अबाउट दैट इंसल्ट। भगवान ने ये क्यों किया है, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, ऐसे पूछना चाहिए। तो ये काम हो क्रोध हो लोभ हो, तीनों को ऐसे हमने देखना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर कोई किसी व्यक्ति का हृदय कामक बनकर किसी गलत दिशा में जा रहा है, तुरंत देखना चाहिए उसको भगवान से जुड़ा कर, कैसे, हे भगवान आपके आश्रय जो लेते हैं वो कभी भी वो कामक इच्छाओं से वो पददलित नहीं होते हैं। लेकिन इस माया की इच्छा मेरे मन में आ रहा है, इसका मतलब है मैं आपको भूल रहा हूँ, आप कृपया मुझे स्मरण दीजिए, आप शक्ति दीजिए, ऐसे भगवान को प्रार्थना करना। इस तरह एक एक श्लोक है विष्णु सहस्रनाम में, न क्रोधो न च मात्सर्यो न लोभो न शुभा मति भवन्ति कृत पुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे। अगर हम घोषणा करना चाहते हैं कि मैं भगवान पुरुषोत्तम का भक्त हूँ, तो बता रहे हैं इस श्लोक में, वो ऐसे परिस्थिति में हमको जब डाला जाता है जिसमें हम सुखी नहीं हैं, हमें फ्रस्ट्रेशन आता है, तो हमें क्रोधी न हो जाना उसमें। और ना क्रोध न चाह मात्सर्य, किसी भी मात्सर्यता को हृदय में मत रखना। ना लोभ हो का मतलब है किसी भी लोभ भावना नहीं रखना। ना अशुभामति ही, ये ही उपदेश दिया ध्रुव महाराज की माता ने उनको। उनको बोला ध्रुव महाराज को, हे ध्रुव तुम ध्यान करो, ध्यान लगाओ विष्णु के ऊपर, वो सही मनन है, तुम ध्यान मत करो तुम्हारी सौतेली माँ के संबंध में, और उसने तुमको जो डांटा इसके बारे में तुम मनन मत करो, क्योंकि तुम करोगे तो क्या होगा, तुमको लगेगा कि उसके हाथ पकड़ कर एक टाइट लाफा दे दो उसको, ऐसे लगेगा क्योंकि उन्हें ऐसे बोला, करेक्ट ना, ऐसे लगेगा। तो जंगल में जब गए नारद मुनि ने जब उपदेश दिए उनको, उन्होंने ये मत पूछा नारद मुनि को कि ये सौतेली माँ को कैसे मारे, ऐसे कुछ नहीं पूछा, उन्होंने बोला कि विष्णु को कैसे प्राप्त करे, करेक्ट ना। तो उन्होंने ध्यान लगाया विष्णु की ओर ऐसे। तो इसलिए मनन करने के लिए लायक क्या क्या चीज है मैंने अभी आपको बोला, मनन ना करने के लिए लायक चीज क्या क्या है, जैसे दूसरों में दोष, अगर दोष बताना हो, अगर आपके काउंसलिंग हो, कोई किसी को सुधारना हो, सुधारने की भावना से हम उनको कुछ बता सकते हैं, नहीं तो दूसरों में दोष देखकर सारे दुनिया ये दोषों का सागर है। श्लोक क्या है वो, कलौर दोष नित्य। अगर कोई समुद्र के सामने खड़ा है और आपको बुलाकर बोलता है कि आपको पानी दिखाऊं, क्या पानी का बूंद, अरे पानी का बूंद क्या, समुद्र पड़ा है सामने। इस तरह कलयुग में आकर अगर वो बोलेगा मैं उसको दोष दिखाऊंगा, आओ इधर, दोष ही दोष है सब दिशा में। इसलिए हम दोष को ढूंढना बहुत कठिन बात नहीं है, हम में भी है दूसरों में भी है, लेकिन इसके इसलिए ये एक विषय है, इस दुनिया में हम पूरा दोष ही देखेंगे लेकिन विष्णु के ऊपर ध्यान नहीं लगाएंगे तो हम दोष के बीच में ही पड़ जाते हैं। जैसे एक जहाज के एक नाव के अंदर पानी घुस गया तो नाव डूब जाता है, है ना। लेकिन वो पानी के पानी को हम अंदर नहीं जोड़ते हैं, लेकिन उसी पानी को लेकर हम तैर कर दूसरी किनारे में पहुंच सकते हैं, है कि नहीं। इस तरह कलयुग दोषों का जमाना है, इसलिए हम दूसरों के ऊपर दोषारोपण ना करके हम हमारे नाव को चलाएंगे तो हम पार बेड़ा पार हो जाएगा हमारा ऐसे है। लेकिन अगर हम दूसरों के दोषों को बहुत गंभीरता से लेंगे तो वो घुस जाएगा नाव के अंदर, तो नाव के अंदर घुसकर वो नाव को ही डुबा देगा उस इस तरह। तो इसलिए मनन करने के लिए लायक चीज नहीं है दूसरों का दोष। और एक चीज क्या है मनन के लिए लायक नहीं है, हमारे दूसरे वक्तों के साथ बर्ताव में जो दोनों की त्रुटियां ऊपर आते हैं, उनका त्रुटियां हमारे त्रुटियां दोनों ऊपर आते हैं, और जो हमारे व्हाट यू से द हर्ट ऑफ द हार्ट व्हाट यू से, उसको हिंदी में एक खास शब्द है उसके लिए, दैट इज वन पर्टिकुलर वर्ड इन हिंदी फॉर दैट क्लैश इज कॉल्ड मनमुट्टी बोलते हैं, मनमिटाव बोलते हैं, मनमुटाव बोलते हैं उसको। इस तरह जब आता है उस तरह के विचारों को सोचने के लिए लायक चीज नहीं है। जैसे आपके घर के दरवाजे को खोलकर आप लारी वाले को नहीं बोलोगे कि सब गार्बेज गार्बेज लेके आओ, उसको रिवर्स गियर करके लेके आओ और घर के अंदर डाल दो, क्या आप बोलेंगे आप ऐसे उसको? घर को हम साफ रखना चाहते हैं, इसलिए मन में ना रखने के लिए लायक चीज़ क्या है, दूसरों के दोष दूसरों के अंदर कुछ कमी है क्या, अगर हम सुधार सकते हैं तो बोलना अच्छा है, अगर हम सुधारने की शक्ति हमारे अंदर नहीं क्षमता नहीं है तो कौन उनको सुधार सकता है, अंतर्यामी है उनके हृदय में तो उनके गुरु हैं गुरुजन हैं जो भी है वो गाइडेंस देते हैं उनको, तो हमको उसके बारे में सोचकर क्या मिलने वाला है। कभी कभी कुछ भक्त हैं बोलेंगे इधर आओ तुमको मालूम है उसको उसका उसका लफड़ा हो गया मालूम है उसका है, तो बोलने से क्या मिलने वाला है। तो लेकिन अगर हमें सुधार सकते हैं तो उसको सुधार सकते हैं, है कि नहीं है, ये पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ हमने बोला कि हमारा जो आदान प्रदान होता है भक्तों के साथ ये हमेशा प्रेममय नहीं होगा, लेकिन शास्त्र नहीं बोलते हैं कि भक्तों के बीच में कभी झगड़ा होता ही नहीं है। उदाहरण के लिए पंच पांडवों में जितना झगड़ा हुआ उतना झगड़ा कौरवों में नहीं हुआ। कारण क्या है, एक सौ कौरव सब लोग सलाम मारकर धृतराष्ट्र और दुर्योधन दुशासन इनकी फॉलो करते थे, क्योंकि प्लानिंग करने वाले थे शकुनी और इम्प्लीमेंट करने वाले थे दुर्योधन और कमजोर होकर परमिशन देने वाले थे धृतराष्ट्र, ऐसे है। तो ये सब लोग एक पार्टी थे तो उनको फॉलो करने वाले एक सौ कौरव थे। कारण क्या था, आजकल कंपनी में भी आप देखते हो सब लोग जुड़कर काम करते हैं क्योंकि सबको पैसा है उसमें, कंपनी बोलता है चुपचाप कुछ आवाज़ मत करो साथ में काम करो तुमको भी मिलेगा तुम्हारा हिस्सा, ऐसा बोलता है ठीक है चुपचाप काम। कंपनी में अगर कोई चिल्लाता है सबॉर्डिनेट उसको बोला ये क्यों चिल्ला रहे हो, क्या जी 16 घंटा आना पड़ता कंपनी में, चिंता मगर 5,000 और साथ में देंगे ठीक है ना, ठीक है चुप बात चला जाता है, पैसा को लेकर मुख को दबा देते हैं ऐसे कंपनी में आप देख सकते हैं ऐसे। इसलिए इस दुनिया में जिधर इंद्रिय तृप्ति है उधर कोऑपरेशन बहुत आसान है, वो कठिन नहीं है, क्योंकि हम भी चोर तुम भी चोर दोनों चुप, हम चुप तुम चुप दोनों चोर करके लेके जाएंगे हम। लेकिन पंचपांडव आप देखेंगे एक बार झगड़ा हुआ द्रौपदी और भीम के बीच में, क्यों, द्रौपदी ने बोला कि अश्वत्थामा को छोड़ दो, भीम ने बोला अश्वत्थामा को मत छोड़ो मारो, तो मतभेद हुआ उनके बीच में। इस तरह एक बार युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन के बीच में मतभेद हुआ, है कि नहीं, अरे युधिष्ठिर महाराज ने बोला अरे कर्ण को मारा नहीं तुम, मेरे पास आकर पूछ रहा है मेरा गाँव क्या हुआ, अरे क्या तुम वीर है शूर है त्याग दो तुम्हारे गांडीव को, ऐसे बोले युधिष्ठिर महाराज। ऐसे तो युधिष्ठिर महाराज कभी बोलने वाले नहीं थे साधारण, ऐसे बात ऐसे किया उन्होंने तो वो गिड़गिड़ाने लगा अर्जुन, क्योंकि अर्जुन का एक शपथ था कि अगर कोई बोलेगा मुझे गांडीव को छोड़ो तो उसको मार दूंगा मैं। तो कृष्ण को पूछा कि वो मारने के लिए तैयार हो रहा था, तो कृष्ण को पूछा क्या करना चाहिए मेरे बड़े भाई को मार दो, तो कृष्ण बोला अरे मूर्ख मैं तुमको ऐसे एक आइडिया बताऊंगा जो मारने से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। तो बोला कि उनको ऐसे ही तुम निंदा करो क्योंकि क्षत्रिय के लिए संभावित से चाकीर्तिर मरणादतिर इच्छते, ऐसे बोला। तो भगवान ने उनको कुछ सुझाव दिया ऐसे, ऐसे आप देखेंगे भीम और युधिष्ठिर के बीच में मतभेद होता था। तो भीम जब कड़ा था द्रौपदी के वस्त्रहरण होते समय, तभी उसके कान से नाक से आग के चिंगारी निकलते थे, इतना क्रोधित होता था वो। वो युधिष्ठिर को पूछा कि भैया देखो अभी क्या हो रहा है, अभी अभी आप बोलो आप तुरंत में गदा को लेकर दुशासन के सर के ऊपर फोड़ूंगा, खत्म हो जाएगा उधर ही उधर वो, वो जान गया उसका, आवाज भी नहीं निकलेगा उसका, ऐसे मारूंगा अभी। और जो दुर्योधन ने बोला मेरे जांग के ऊपर आकर बैठो द्रौपदी, क्या हक है उसको बोलने की, आप हाँ बोलो उसकी जांग को अभी तोड़ दूंगा मैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज बोले देखो हमें धर्मपरायण होना चाहिए, शांत रहो, हमने सब त्याग दिया, राज्य भी त्यागा, बीबी को भी त्याग दिया, तो हमें ये करने के लिए लायक चीज नहीं है, मत करो। तो भीम के अंदर एक भूकंप उठता था उसके हृदय में। बाद में वो जंगल में जाने के बाद भी द्रौपदी को बोलता था कि देखो युधिष्ठिर महाराज इसको कौन समझ सकता है इसको, है? जितना भी समझा वो समझता नहीं है, है? ऐसे। और द्रौपदी भी बोलती थी हाँ, द्रौपदी बोलती थी भीम को तुम कैसे मेरी मन की बात जान लिया तुमने, है? दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन गए। तो इस तरह सब लोग आपस में झगड़ा होता ही था उनका, लेकिन उनका एक बड़ा आश्रय क्या था, भगवान कृष्ण के आश्रय, कृष्ण के आश्रय लेकर वो लोग चल रहे थे। देखिए तो कृष्ण अगर बोल दिया कुछ तो सब मानते थे, कृष्ण ने बोला करके मान लेते थे, बस दैट्स द फाइनल फाइनल वर्डिक्ट। तो हम देख सकते हैं कि इस तरह ये जो हम मनन करने के लिए चीज क्या है, इस तरह कुछ मनमुटाव होता है भक्तों के बीच में, उसके बारे में वो मनन करने के लिए लायक चीज़ ही नहीं है, वो कुछ काम का नहीं है। कारण क्या है वो भी समझना चाहिए हमें, क्योंकि इस दुनिया में लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर वेरी सुपरफिशियल इन द माइंड। इस दुनिया में अगर कोई मुझे प्रशंसा करता है तो वो मेरा मित्र है, अगर मेरे में कुछ दोष दिखाता है तो वो मेरा शत्रु है। इस तरह हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं इस दुनिया को, और उसके बाद क्या करते हैं, वो शत्रु के साथ कोई जुड़ा है वो भी मेरा शत्रु है। कोई जैसे भगवान ऐसे नहीं देखते, भगवान ये बोलते हैं कि देखो हिरण्यकशिपु का बेटा वो भी मेरा दुश्मन है, भगवान देखते हैं ऐसे, भगवान बोलते हैं अरे प्रहलाद प्रहलाद है, हिरण्यकशिपु है, दोनों को अलग करके देखते हैं, क्योंकि हर एक जीव के अंदर अलग अलग भावनाएं उठते हैं। तो इस तरह प्रहलाद बोलते हैं कि इस दुनिया में तुम्हारे कोई दुश्मन नहीं है, तुम्हारा मन ही तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, ऐसे बोलते हैं प्रहलाद महाराज जी। तो इसलिए एक व्यक्ति को मनन करने के लिए चीज़ जो लायक नहीं है उनमें मनन नहीं करना चाहिए। मनन करने से क्या होगा, मन कमजोर होगा। अगर हम मन को कमजोर करना चाहते हैं, देखिए कमजोर कौन है, जैसे धृतराष्ट्र कमजोर व्यक्ति है, क्यों, उनके हृदय में आसक्ति है। ध्रुव महाराज भी कमजोर व्यक्ति थे, क्यों, क्योंकि उनको उनके हृदय में एक घृणा पैदा हुआ था जिनकी ओर, सौतेली माँ की ओर। तो जिस व्यक्ति के हृदय में घृणा और आसक्ति उत्पन्न होते हैं वो उनको कमजोर करता है। जैसे ये जो बीम्स होते हैं ना उसमें टर्माइट आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दीमक, हाँ दीमक मालूम है, वो अंदर ही अंदर खाता है, वो खाता है खाता खाता एक दिन धड़ाम करके गिरता है बीम, देखते हो पूरा कोकला है अंदर, क्योंकि अंदर काया है वो। इस तरह जो मनन करने के लिए चीज़ लायक नहीं है उस तरह मनन ना करने से हम मजबूत बनेंगे। और मजबूती का मतलब क्या है, कृष्ण का चिंतन, आचार्यों का चिंतन, वैष्णवों के अंदर सद्गुणों का चिंतन, और जो प्राप्त करने के लिए चीज़ लायक हैं उनका चिंतन। इस तरह का चिंतन करने से हमारे मन एक ऐसे बगीचा बनेगा जिसमें रंग बिरंगे सुगंधी फूल हैं, इस तरह मन बनेगा। और मन जितना ऐसे बनेगा, हमें हरिनाम में रुचि, भगवत कथा में रुचि, भगवत सेवा में रुचि, और प्रभुपाद की मिशन में योगदान देने के लिए रुचि, यह सब बढ़ेगा हमारे मन में। अगर हम मन में कमजोर हो जाएंगे, हम अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को भी कम कर देंगे, हम सेवा में रुचि नहीं आएगा, हरिनाम में रुचि नहीं आएगा, कथा सुनने में कथा सुनने में रुचि नहीं आएगा, और कृष्ण को देख कर ही क्रोध आएगा, क्या कृष्ण ऐसा कर दिया, ऐसे ये भक्त ऐसा हो, तो इस तरह क्या होगा, एक व्यक्ति कमजोर कमजोर कर कोकला हो जाएगा अंदर, समझना आपने। इसलिए ये मन के मनन को कंट्रोल करना वो पहली क्वालिटी, व्हाट इज दैट फर्स्ट क्वालिटी, ಏ ದಾಂತೇ ದಾಂತೆ ಅಕ್ರೀಡನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಭಾಷಿನಿ ಅನುವರ್ತನಿ ಎ ಚಾರ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ದಾಂತೆಕ ಮತ್ಲ ಐಸಾ ನೇ ಕಿ ಇಂದ್ರಿಯೋಂಕೋ ಬಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕರೋ ಬಸ್ ಕಾನೆಕೋ ಕಾನಾ ಕಂಕರ್ನ ಈ ತರಹ ಇಂದ್ರಿಯೋಂಕೆ ವೇಕೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕರ ಇಂದ್ರಿಯೋಂಕೆ ವೇಕ ಹಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕರ ನಹೀ ಪಾಯೆಂಗೆ ಜಬ್ ತಕ ಮನಕೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಹೀ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಮನ್ ಮನ್ ಸಬ್ ಇಂದ್ರಿಯೋಂಕೆ ಲೀಡರ್ ಹೈ ಆಪ್ ಇಂದ್ರಿಯೋಂಕೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕರೆಂಗೆ ಅಂದರ್ ಸೇ ಮನ್ ಉನ್ಕೋ ಲಾದ್ ದೇಗಾ ಇಂದ್ರಿಯೋಂಕೋ ಇಂದ್ರಿಯ ಆಪ್ಕಾ ನಹೀ ಸುನೇಗಾ ಮನ್ ಕಾ ಸುನೇಗಾ ವೋ ಇಸ್ಲೀ ಮನ್ ಮೇ ಜಬ್ ತಕ ಮಲ್ ಹೈ ಉಸ್ ಮಲ್ ಕೋ ಶುದ್ಧ ನಹೀ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಉಸ್ ಸಮಯ ತಕ ಮನ್ ಬಡಾ ಬದಮಾಶ್ ರಹೇಗಾ ಔರ್ ಹಮಾರೆ ಇಂದ್ರಿಯೋಂಕೋ ಸತಾಯೇಗಾ ವೋ ಇಸ್ಲೀ ಇಂದ್ರಿಯೋಂಕಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈ ಮನ್ ಕಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಸಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೈ ಇಸ್ಲೀ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ ಜಬ್ ಬೋಲ್ತೇ ಹೈ ಉಸ್ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಉನ್ಹೊನೇ ಮನ್ ಕೋ ಭೀ ಜಿತಾ ಹೈ ಉನ್ಕೋ ಹೀ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬೋಲ್ತೇ ಹೈ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ ಬೋಲ್ತೇ ಹೈ ಇಸೆ ಔರ್ ಮನ್ ಕೋ ಜಿತನಾ ಹಮಾರಾ ಕಾಮ ನಹೀ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಕಾಮ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ಬೋಲ್ತೇ ಹೈ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನ ತೋ ಕೌಂತೇ ಯ ವೈರಾಗ್ಯ ಏನ ಚ ಗೃಹ್ಯತೆ ಚಾರ್ ನಿಯಮಕೋ ಪಾಲನ್ ಕರೋ ಔರ್ ನಾಮ ಕರೋ ಔರ್ ಅಭಿ ನಾಮಕ್ಕೆ ಬಾರೇ ಅಭಿ ನಾಮ ಹಮ್ ಕರ್ತೇ ಹೈ ಮನ್ ಕ್ಯೋ ಧ್ಯಾನ ಲಗಾತಾ ನಹೀ ಹೈ ಕ್ಯೋಂಕಿ ಹಮಾರೇ ಮನನ್ ಟೀಕ್ ನಹೀ ಹೈ ಅಗರ್ ಹಮಾರಾ ಮನನ್ ಟೀಕ್ ಹೈ ತೋ ಜಪ್ ಕರ್ತೇ ಸಮಯ ಧ್ಯಾನ ಲಗೇಗಾ ಅಚ್ಛಿ ತರ ಜೈಸೆ ಹಮನೆ ಬೋಲಾ ಆಪ್ಕೋ ಆಜ ಮನನ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಲಾಯಕ್ ಚೀಜ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಮನನ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಚೀಜ್ ಲಾಯಕ್ ನಹೀ ಕ್ಯಾ ಹೈ ನಹೀ ಹೈ ಔರ್ ಏಕ್ ಚೀಜ್ ಬೋಲಾ ಕಿ ಶ್ರವಣ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ ಪಠನ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಪಠನ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಬಾದ ಕೈಸೆ ಮನನ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಯೆ ಮೇರೆ ಜೀವನ ಮೇ ಕೈಸೆ ಲಾಗೂ ಹೋತೆ ಹೈ ಯೆ ದೂಸರೋ ಕೆ ಜೀವನ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಕೈಸೆ ಪ್ರಭಾವಿತ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ ಜೈಸೆ ಭಾಗವತ್ ಕಿ ದಶಮ ಸ್ಕಂದ ಮೇ ಏಕ್ ಸುಂದರ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೈ ಕಿ ಯ ವರ್ಷ ಋತು ಹೋಕರ್ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ ಕ್ಯಾ ಆತಾ ವಸಂತ ಋತು ಆತಾ ಶರದ್ ಶರದ್ ಋತು ಆತಾ ಶರದ್ ಋತು ವೋ ಆತಾ ವೋ ದೋನೋಂಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಏಕ್ ಸುಂದರ ವರ್ಣನ ಹೈ ಭಾಗವತ್ ಮೇ ತೋ ಉಸ್ಮೇ ಅನೇಕ ಚೀಸ್ ದಿಯೇ ಗಯೇ ಹೈ ಉಸ್ಮೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೌ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವೋ ಧನುಷ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಜಿಸ್ಮೇ ವೋ ದಾಗಾ ನಹೀ ಹೈ ಹಾಂ ಇಂದ್ರ ಧನುಷ್ ಬೋಲ್ತೆ ಉಸ್ಕೋ ಇಸ್ ತರಹ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಭಿ ಇಂದ್ರ ಧನುಷ್ ಸೇ ತುಲನಾ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಕಾರಣ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಯೇ ಜೋ ಹವಾ ಜೊ ಹೈ ವೋ ಖಮ್ ಖಮ್ ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಆಕಾಶ್ ಆಕಾಶ್ ಮೇ ಹವಾ ರಹತಾ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಆಕಾಶ್ ಕಾ ಯೇ ಗುಣ ಹೈ ಕ್ಯಾ ಗುಣ ಹೈ ಆವಾಜ್ ಶಬ್ದ ವೋ ಉಸ್ಕಾ ಗುಣ ಹೈ ತೋ ಗುಣಿ ಗುಣೀಭೂತ್ ಆಕಾಶ ಮೇ ಗುಣ ಸೇ ಮುಕ್ತ ಹವಾ ರಹತಾ ಹೈ ಇಸ್ ತರಹ ಭಗವಾನ್ ಭಿ ಜೋ ಗುಣಾತೀತ ಹೈ ಸಬ್ ತೀನ್ ಗುಣೋ ಸೇ ಪರೇ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ವೋ ಆತೇ ಹೈ ಇಸ್ ಭೌತಿಕ ದುನಿಯಾ ಕೆ ಅಂದರ್ ಲೇಕಿನ್ ವೋ ಬಂದೆ ನಹೀ ಜಾತೆ ಹೈ ಜಿಸ್ ತರಹ ಏಕ ಧನುಷ್ ಮೇ ದಾಗಾ ನಹೀ ಹೋತಾ ಹೈ ಇಸ್ ತರಹ ರೇನ್ಬೋ ಮೇ ಭಿ ಕುಛ ದಾಗಾ ನಹೀ ಹೈ ಫಿರ್ ಭಿ ಉಸ್ಕೋ ಬೌ ಬೋಲಾ ಜಾತಾ ಹೈ ರೇನ್ ಬೌ ಬೋಲ್ತೇ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ ಐಸೆ ತೋ ಇಸ್ ತರಹ ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ಕೋ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೇ ತುಲನಾ ಕಿಯಾ ಹೈ ಕ್ಯೋಂಕಿ ವೋ ಕಭಿ ಬಂದೆ ನಹೀ ಜಾತೆ ಹೈ ನಮಾಮ್ ಕರ್ಮಾಣಿ ಲಿಂಪಂತಿ ನಮೇ ಕರ್ಮ ಫಲ ಇಸ್ ಪ್ರಭಾ ಭಗವಾನ್ ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ ಇಸ್ ತರಹ ಬೋಲ್ತೇ ಕಿ ಆಕಾಶ ಮೇ ಜೋ ಬಾದಲ್ ಹೈ ಔರ್ ಬಾದಲ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ಸೇ ಗರಜ್ತಾ ಹೈ ಗುಡ್ 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 ಕರ್ಕೆ ಐಸೆ ಹೈ ಔರ್ ಬಿಜಲಿ ಭಿ ಚಮಕ್ತಾ ಹೈ ತೋ ಬೋಲ್ತೇ ಕಿ ಬಾದಲ್ ತಮೋಗುಣಿ ತಮೋಗುಣಿ ಹೈ ಔರ್ ಉಸ್ಮೇ ಚಮಕ್ನೆ ವಾಲಿ ಜೋ ಬಿಜಲಿ ಹೈ ವೋ ಸತ್ವಗುಣಿ ಹೈ ಔರ್ ಡುಬ್ ಡುಬ್ಡು ಆವಾಜ್ ಹೋ ರಜೋಗುಣಿ ಹೈ ಐಸೆ ತುಲನಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಐಸೆ ತೋ ತೀನೋ ಏಕ ಹೀ ಸ್ಥಾನ ಮೇ ಐಸೆ ಜಬ್ ದೇಖತೆ ಹೈ ಔರ್ ಆಸಮಾನ್ ಆಕಾಶ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಏಕ ಕೋನೆ ಮೇ ಕುಛ ಬಾದಲ್ ಹೈ ಜೋ ಚಂದ್ರಮಾ ಕೋ ಡಕಾತೆ ಹೈ ಯೇ ತಾರೋಂಕೋ ಡಕಾ ದೇತೆ ಹೈ ಐಸೆ ಇಸ್ ತರಹ ಸುಪ್ರೀಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ್ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ಬಡೇ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಉನ್ಕೆ ಏಕ ಛೋಟಾ ಅಂಶ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಜೀವಾತ್ಮ ಲೋಗ್ ವೋ ಡಕ ಜಾತೆ ಹೈ ಮಾಯಾ ಕೆ ಬಾದಲ್ ಸೇ ಐಸೆ ವೋ ತುಲನಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಐಸೆ ತೋ ಇಸ್ ತರಹ ಆಪ್ ಉಸ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೋ ಪಡೆಂಗೆ ಇತನೇ ಸಬಕ್ ಸಿಖಾಯ ಗಯೇ ಹೈ ಉಸ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೇ ಅನೇಕ ಲಗ್ಭಗ 25-30 ಉದಾಹರಣ ಹೋಂಗೆ ಐಸೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೋ ದೇಖ ಕರ್ ಬಾರಿಷ್ ಕೆ ಮೌಸಮ್ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಹಮ್ ಸೀಖ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಐಸೆ ಬಹುತ್ ಸುಂದರ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಮೇನೆ ಕ್ಯೋ ಕೋಟ್ ಕ್ಯಾ ಇದರ್ ಮೇ ಕಾರಣ ಆಪ್ಕೋ ಬತಾಉಂಗಾ ಕಿ ಹಮ್ ಹಮಾರೆ ಗುರು ಕೆ ಮುಖೋ ಸೇ ಸುನ್ತೆ ಹೈ ಉನ್ಕೆ ವಾಣಿ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ ಹಮ್ ಕಿತಾಬೋ ಕೋ ಪಡ್ತೆ ಹೈ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ ಹಮ್ ಅನೇಕ ವೈಷ್ಣವ ಕೆ ಮುಖ ಸೇ ಸುನ್ತೆ ಹೈ ಉನ್ಕೆ ವಾಣಿ ತೋ ಕಿತಾಬ್ ಸೇ ಪಡ್ಕರ್ ಔರ್ ಸಮಜ್ತೆ ಹೈ ಹಮ್ ಉಸ್ಕೋ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ ಹಮ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೋ ದೇಖತೆ ಹೈ ವೋ ಭಿ ಹಮಾರೆ ಗುರು ಬನ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಜೈಸೆ 24 ಗುರು ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ವರ್ಣನ ಆತಾ ಹೈ ಕಿಧರ್ 11 ಸ್ಕಂದ ಮೇ ವರ್ಣನ ಆತಾ ಹೈ ಉನ್ಹೊನೆ ದೇಖಿ ಕಹಿ ಏಕ ಬಂಗಾಲ್ ಮೇ ಏಕ ಮಹಾನ್ ಏಕ ಧನಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾ ಲಾಲ್ ಬಾಬು ನಾಮ ಕೆ ತೋ ಏಕ ದಿನ ಐಸೆ ಚಲ್ ರಹಾ ತಾ ಏಕ ತಾಲಾಬ್ ಕಿ ಓರ್ उस तालाब में एक तरुण स्त्री पानी उठा रहे थे ये गड़ा में, और एक उसकी बड़ी बहन खड़ी थी निकट ही। बड़ी बहन बोल रही थी कि हे देरी मत करो, वेला नाई, ऐसे बोला उन्होंने, वेला नाई का मतलब है टाइम टाइम नहीं है, जल्दी आओ, अभी किचन में जाना है। तो ये लाल बाबू ने ये सुन लिया, हो टाइम नहीं, बहुत लेट हो गया। तो उनको लगा कि हे भगवान, मैं आपको बोल कर कितना साल बिता दिया इस दुनिया में, आपको बोल गया करके तुरंत तो गुरु जी के पास जाकर समर्पित हो गया वो पूरा। इस तरह वो लाल बाबू महान वैष्णव बने। बाद में घर घर में जाकर वो याचना करते थे, हालांकि बड़े जमींदार थे पहले, महान वैष्णव बने वो। प्रभुपाद जी उनके कोट करते हैं इसमें, एनओडी में कोट करते हैं प्रभुपाद जी ऐसे। इस तरह प्रभुपाद जी के पास एक पोस्टमैन आकर बोला कि स्वामी जी, आप तो मैगजीन तैयार करते हैं बीटी जी, लेकिन आप किताब बनाओगे इस तरह, वो किताब को लोग अपने कमरे में रखेंगे, अपने कबाड़ में रखेंगे लोग, लेकिन मैगजीन लोग पढ़ते हैं फेंक देते हैं। तो प्रभु ने बोला कि मेरे गुरु उसके द्वारा बोल रहे हैं मुझे। इस तरह उन्होंने सुनकर उसके बाद किताब बनाना शुरू किया प्रभुपाद ने। आज प्रभुपाद की किताबें सारे दुनिया को नचा रहे हैं, प्रभुपाद की इतनी किताबें गए हैं आप देख सकते हैं इस तरह। तो इस तरह हम जितना मन में हम चरवण करेंगे सही विषयों का, उतना हम हमारे परमात्मा की आदेशों को भी हम सुन पाएंगे। साथ साथ बाहर दूसरे जीवों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा जो भगवान हमें कुछ प्रेरणा देना चाहते हैं, हम उनके द्वारा भी हम सीख सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे महान भक्त लोग जो होते हैं वो बहुत आसानी से सरल उदाहरण देते हैं अपने जीवन के अनुभवों से। आप देख सकते हैं कोई बड़ा चील है उड़ रहा है, एक मछली आता है ऊपर, चील ऐसा कर चाक करके उसको पकड़ कर जाता है ऊपर। ये तो हम भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है। हम देख कर बोलेंगे, आप पूछो उसको क्या देखा आपने, वो चील पकड़ लिया प्रभु जी मछली, तो आपने क्या समझा, वो बेचारा मछली मर गया प्रभु जी, तो आपने क्या समझा, हमारा क्या, हम मछली नहीं है, हमको कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे हम सोचेंगे। लेकिन इसमें सबक क्या है, अगर कोई व्यक्ति भक्ति में डूब कर भक्ति नहीं करेगा, ऐसे वो कोस्टिंग अलांग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ऊपर ऊपर भक्ति करेगा तो माया से पकड़ा जाएगा वो, है ना, ऐसे एक सबक है सबक उसका। देखिए हम इस संस्था में जुड़े हैं, हमारा भक्तिमय दिव्य ज्ञान जो लेते हैं उसको कैसे लेना चाहिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कुछ कुछ लोगों का व्याधि है पेट में, इसके कारण क्या होता है, आप जो भी खाते हैं पीछे नीचे निकल जाता है वो, लेकिन शरीर में वो ये नहीं होता, क्या बोलते हैं, अब्जॉर्ब नहीं होता है, पोषण नहीं होता है, इसलिए वो पतले रहते हैं ऐसे है? जैसे एक बार परम पूज्य भक्तिचार्य महाराज आए थे पुणे में, और मुझे देखा महाराज बोले, राधेश श्याम, हाउ यू आर ऑलवेज सो स्लिम, यू नेवर गेट फैट, ऐसे पूछा उन्होंने मुझे। यू डोंट गेट ओबेसिटी, आर यू ईटिंग वेल, ऐसे पूछा उन्होंने। तो महाराज बोले कि सारे दुनिया में लोग आजकल डरते हैं कि मोटे ना हो जाए, खास करके फास्ट फूड वगैरह खाकर, क्योंकि शरीर का साइज डबल ट्रिपल हो जाता है, कुछ लोग वेट लॉस प्रोग्राम वगैरह करते हैं ऐसे आजकल। तो महाराज बोले कि कैसे तुम ऐसे रखते हो, तो मैं बोला महाराज को पिछले 20 साल 25 साल हमारा वेट 50 किलो बस इंक्रीज नहीं किया, क्योंकि वो डॉक्टर बोला कि जब खाते हैं वो पूरा पचन होकर शरीर में ये नहीं होता है, क्या बोलते हैं, अब्जार नहीं, पोषण नहीं होता है, वो निकल जाता है इसे। लेकिन हम जिस तरह शरीर का उदाहरण हम दे रहे हैं, इस तरह आत्मा का भी उदाहरण हम दे सकते हैं। अब आत्मा जो है श्रवण करता है, कुछ लोग ऐसे श्रवण करते हैं, ऐसे चला जाता है, ऐसे सुनता है, ऐसे ही चला जाता है, इधर से ऐसे नहीं तो इधर से इधर चला जाता है, ऐसे अंदर घुसता ही नहीं है वो। कोई था, कोई भागवतम क्लास होने के बाद बाहर निकल रहा था, मैं तभी पहुंचा मंदिर में, बोला कि इतना जल्दीबाजी करके आया मैं, पहुंच नहीं पाया, क्लास हो गया। ठीक है, आप बोलो क्लास आज क्या क्लास हुआ, भागवतम क्लास हुआ प्रभु जी। बोला ठीक है, भागवतम क्लास ही, लेकिन क्या बोला, कुछ तो अच्छा बोला प्रभु जी, कुछ कृष्ण के बारे में ही बोला कुछ, है ना, इसलिए कृष्ण के बारे में क्या बोला, हो याद नहीं प्रभु जी, कुछ भूल गया प्रभु जी। ठीक है, एक चीज़ बोलो। देखिए विद्यार्थियों को जब हम प्रवचन देते हैं, एक बार सब विद्यार्थियों को सर्कल में बिठा कर, मैं तो छोड़ता नहीं, प्रवचन के बाद पूछता हूँ एक एक सेंटेंस बोलने का सबको। तो एक व्यक्ति बोलता है, एक उसने बोला कि प्रभु जी आपने बोला कि ना हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, बोला उसने। ठीक है, करेक्ट बोला आपने। दूसरे को पूछा तुम बोलो और एक पॉइंट बोलो, एक उदाहरण कुछ तो बोलो। वो बोला नहीं वही पॉइंट है मेरा। मैंने बोला नहीं नहीं आप और कुछ नया बोलो। नहीं प्रभु जी वो मैं भी वही बोलने वाला था। मैंने बोला अरे मैं सैकड़ों चीज बताया आज क्लास में, एक चीज बताओ तो। वो बोल रहा प्रभु जी नहीं नहीं प्रभु जी मुझे दूसरा कुछ मालूम नहीं, यही मालूम है मुझे। तो एक ऐसा है, एक बायोलॉजी टीचर ने एक लड़के को पूछा कि एम्फीबियन का एक उदाहरण दो, तो बोला फ्रॉग बोला उसने। दूसरे लड़के को बुलाया टीचर ने, तुम बोलो। इसे सेकंड अनदर फ्रॉग ऐसे बोला। वो टीचर बोले नहीं नहीं फ्रॉग को छोड़कर कुछ बोलो, वो हमको मालूम नहीं हुआ है ना। इसका मतलब है ध्यान से सुना नहीं है, हमें नोट्स बनाना चाहिए मन में, क्योंकि बाहर नोट्स कभी कभी भी मैं क्लास में जाता हूँ विद्यार्थियों को पूछता हूँ पिछले हफ्ते मैंने क्या बोला, तो लड़के वेट करो प्रभु जी थोड़ा नोटबुक निकालते हैं। हाय नोटबुक को मत देखना, अगर नोटबुक को देखना तो नोटबुक विल गो बैक टू गॉडेड। अगर तुमको बैक टू गॉडेड जाना है तो तुमको रखना है अंदर, याद रखना। तो पहला चीज है हम क्लास अच्छी तरह सुनकर पॉइंट्स को थोड़ा स्मरण करें, उनका उसका श्रवण करना चाहिए उसका, तो पचन करना चाहिए उनको। कभी कभी हम जानते हैं लेकिन लागू नहीं करते हैं। Sometimes we know the truths, but we are refusing to follow, because we have our attachments and aversions. So we are refusing to follow. इसलिए कम से कम जानकारी तो होना चाहिए। अगर व्हीकल ड्राइव करना तो लेफ्ट में ड्राइव करना कम से कम मालूम चाहिए। एल्बो भी लगाते हो ठीक है, एल्बो लगाया है, लेकिन लेफ्ट में ड्राइविंग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एल्बो रखने वाले कहीं भी चला सकते हैं, ऐसा नहीं है। इवन इफ यूर एल्बो ऑल्सो करेक्ट ना कर्नाटक प्रभु, इफ यू हैव एल्बो यू शुड ड्राइव ऑन लेफ्ट और यू कैन ड्राइव ऑन राइट ऑल्सो, करेक्ट ना। तो नियम को जानना चाहिए ऐसे। इस तरह हम भी जब सुनते हैं उसको सुनकर पचन करना चाहिए। तो पचन करने का तरीका क्या है, क्लास होने के बाद जब हम आपस मित्रों के साथ चर्चा करते हैं, आज क्लास में क्या हुआ, ये पॉइंट अच्छा था, वो पॉइंट अच्छा था, ये उदाहरण मुझे बहुत अच्छा लगा, और हम हमारे मन से और कुछ उदाहरणों को सोचना चाहिए कि हमने पढ़ा यही चीज़ मैंने कहीं और भी सुना, कनेक्ट करके देखना चाहिए, कंपेयर करके देखना चाहिए, कंपेयर कॉन्ट्रास्ट एवैल्यूएट एनालाइज अंडरस्टैंड अप्लाई हाउ इट इज अप्लीकेबल टू माई लाइफ, मेरे जीवन में और दूसरों के जीवन में कैसे लागू है। क्योंकि भगवान के लीलाओं को तो पचन करना थोड़ा कठिन है। कौन पचन कर सकता है, जिसका मन एकदम निर्मल है वही पचन कर पाएगा उसको। महान भक्ति जो नारद लड़का जो था बड़ा भाग्यशाली था, क्योंकि उसकी माता तो एक दासी थी, वो बहुत बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन उसका उसके अंदर श्रद्धा था। बाद में वो बोलेगा उसके बारे में, तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रश्रितस्य हतैन सह श्रद्धदानस्य बालस्य दान्तस्य अनुचरस्य च। उसमें बताते हैं कि मैं बड़ा श्रद्धादान था, उनके शब्दों में श्रद्धा था, तो श्रद्धा के साथ सुना। और आसक्ति को भौतिक आसक्ति को निकाल कर उनको आध्यात्मिक आसक्ति प्राप्त हो गया उन ऋषि मुनियों से। और दांत दांत के बारे में आज चर्चा किया हमने, वो भी किया है उसने। और एक चीज़ बताते हैं कि उसमें दांत अक्रीडने के अल्पभाषिनी अनुवर्तनी, इसको इसके बारे में दो शब्द बोलकर मैं प्रवचन को विराम दूंगा अभी। अनुवर्तनी का मतलब है ओबीडियंस। क्या है, कभी कभी क्या करते हैं कुछ लोग बाहरी दृष्टि से बड़े आदर दिखा देते हैं, बड़ा दंडवत प्रणाम करते हैं, लेकिन उनके मन में ऐसी शरणागति नहीं है। जिसके कारण क्या है, जब कोई देखेगा कि उसके ऊपर वाला एकदम निकट है, जैसे मैनेजर है, जैसे कोई तो देख रहा है उनको, तो उनके सामने कुछ करेगा, उनके अनुपस्थिति में और कुछ करेगा। जस्ट लाइक इंग्लिश देयर इज अ सेइंग द रैट प्लेस व्हेन द कैट इज अवे, ऐसा एक सेइंग ऐसे है। तो कुछ कुछ लोगों का आदत है कि पीछे कुछ बोलना, सामने कुछ बोलना, इसको नाटी बोलते हैं, नाटी बिहेवियर। I was not naughty, he says, no? Not naughty means what? Very straightforward, simple, transparent. So, actually obedience ka matlab, we need internal obedience, not just external obedience. So, I say, dekhenge ki, ek bhaktate, ye jo, Haridas Prabhu, ek bar chocolate kar dete market se, I say, apne packet mein rakha tha. Jab Prabhupad ji ko milne ke liye aaye, dandavat pranam kiya, chocolate packet, aakhande gir gaya niche. Prabhupada ne dekha, ye kya chocolate? Are you eating chocolate? No, no, Prabhupada. And he kept, Prabhupada, if you want, you can also eat, Prabhupada. So, Prabhupada ne kaha nahi, Prabhupada bole ki, main aise ek chocolate halwa bana kar dunga tumko. Chocolate halwa nahi, kya bolte hain usko? Carob, carob halwa. Prabhupada ne bana kar diya, ki tum chocolate ko bhul jaoge tum. तो इस तरह कभी कभी भक्त लोग अपने जीवन से बताते हैं कि मैं इसको छुपाने के लिए ट्राई किया. तो ये दिस इज एक्चुअली डिसोबीडियंट बिहेवियर विच एक्चुअली एवेंचुअली विल गेट क्लेंज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन ये नारद मुनि बता रहे हैं कि पहले से इनके अंदर ये अच्छा आदत था कि अंदर बाहर जो बोलते थे वो सरल थे, सीधे साधे थे, टेढ़े मेढ़े नहीं थे, और वो अंदर भी उन्होंने आदर दिया. इसके कारण क्या है, देखिए हम मन को जितना सरल रखते हैं, निष्कपट रखते हैं, उतना भगवान पकड़े जाते हैं, क्योंकि भगवान भी ऐसे ही व्यक्ति हैं, निर्मल व्यक्ति हैं, तो मैच हो जाता है. लाइक वी से रेजोनेंस, वी से ना, भगवान भी भावग्राही हैं, निर्मल हैं, शुद्ध हैं. जो निर्मल होते हैं, सीधा साधा होते हैं, टेढ़े मेढ़े नहीं होते हैं, निष्कपट होते हैं, तो उनका और भगवान का मैच हो जाता है, जैसे मेड फॉर ईच अदर बोलते हैं ना. ऐसे चुंबक होता है, उससे लोहे जो है तुरंत पकड़े जाते हैं ऐसे, लेकिन चुंबक को लीजिए और एक लकड़ी को लेकर निकट लेके जाए, वो पकड़ता नहीं है वो, है ना. इसलिए ये सही गुणों को पकड़ना चाहिए. लेकिन आज के सत्र में मैंने खास करके दांते के बारे में बोला, क्योंकि वो महत्वपूर्ण गुण है और हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं. अभी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इस तरह मन को वश में करना चाहिए, भगवान की मदद के द्वारा, भक्तों के मदद के द्वारा हम मन को वश में करके भगवान में आविष्ट करें मन को. और जब मन भगवान में आविष्ट होता है तभी असली रुचि जागृत होगा हृदय में. भगवान और भक्तों के लीला जो है, लीला चेष्टाओं में जब रुचि जागृत होता है, वो ही एकमात्र मार्ग है परम दृष्टवा निवार्तते. श्री प्रभुपाद की और भक्तवृंद की.